ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्र सरकार ने कहा, दिल्ली में मौसम और वर्षा के पूर्वानुमान में सुधार के लिए 50 नए स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित की जाएगी। न्यायाधीश शील नागू ने आज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल बडोली को हरियाणा प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 2023-24 में पहली बार 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हुई और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली में सक्रिय मानव अंग प्रतिरोपण के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दिल्ली में मौसम और वर्षा की पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार करने के लिए जल्द ही 50 नए स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन प्रणालियों की संख्या को भविष्य में बढ़ाकर 100 किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी सहित पूरे देश में जारी मॉनसून के मद्देनजर जनता की चिंताओं और सुझावों का समाधान करने के लिए बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान डॉ सिंह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्वानुमान प्रणाली को लोगों के अनुकूल बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि अप्रत्याशित मौसम परिवर्तनों से होने वाले आर्थिक नुकसान को बचाया जा सके। दिल्ली में फिलहाल 17 स्वचालित मौसम पूर्वानुमान केंद्र हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों की संख्या को बढ़ाने का उद्देश्य इसे वैश्विक मानकों के बराबर लाना है। दिल्ली में जारी मॉनसून के बीच जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने करोलबाग क्षेत्र में 8 मोबाइल पंप की व्यवस्था की है। दिल्ली नगर निगम के करोलबाग क्षेत्र के उपायुक्त अभिषेक कुमार मिश्रा ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए आज करोलबाग क्षेत्र के 2 पंप हाउस का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों पंप स्टेशनों पर 24 घंटे निगम कर्मचारी उपस्थित रहें ताकि जलभराव की स्थिति में पंप हाउस की पंपिंग के कार्य में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न हो। श्री मिश्रा ने जलभराव की समस्या की शिकायत प्राप्त होने के तुरंत बाद अतिरिक्त मोबाइल पंपों को जलभराव स्थल पर भेजे जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। दिल्ली में आज तेज वर्षा होने से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार की आलोचना की है। भाजपा ने कहा है कि आज की बारिश और जलभराव के बाद फिर एक बार सरकार के कार्यों की पोल खुल गई है। आज एक प्रेस वार्ता में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और नगर निगम महापौर डॉ शैली ओबराय मॉनसून से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों का लगातार दावा कर रही थीं, लेकिन आज कुछ मिनटों की बारिश ने उनके दावे की पोल खोल दी।
पूरा का पूरा इकोसिस्टम आम आदमी पार्टी का एक ही बात करता है कि जैसे उनके मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज बोलना शुरू करें उसके बाद झूठ बोलिए, लगातार बोलिए और पूरा दिन बोलते रहिए। हमने मानसून की तैयारी कर दी है, हमने नालों की सफाई कर दी है। अगर पूरी तैयारी कर दिया तो फिर संगम विहार, देवली, बुराड़ी, किशनगंज, आईटीओ ये सब पानी से भरे हुए क्यों है? दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ देना और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। आखिर आम आदमी पार्टी दिल्ली को कहां लेके जाना चाहती है?
श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि शहर में नालों की सफाई के नाम पर सरकार के संबंधित विभाग करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नालों की सफाई और मॉनसून की तैयारी को लेकर 24 घंटे के अंदर सर्वदलीय बैठक बुलाए। श्री सचदेवा ने कहा कि यदि सरकार सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाती है तो भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी। श्री लवली ने कहा कि सुश्री आतिशी और डॉ ओबराय ने मॉनसून की तैयारियों के दावे के बजाय यदि सही में काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि मॉनसून और बाढ़ पर एपेक्स कमेटी की बैठक समय पर न होने से लोगों को जल जमाव की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने में डेंगू के 246 मामले सामने आए हैं जो शहर के लोगों के लिए खतरे की घंटी है। श्री यादव ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार किसी समस्या के चरम स्थिति पर पहुंचने पर ही उस पर संज्ञान क्यों लेती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डेंगू मामलों पर नियंत्रण के लिए अस्पतालों को निर्देश देने के बजाय काम करें। श्री यादव का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को मई माह में भी अस्पतालों को डेंगू पर नियंत्रण करने का निर्देश देना चाहिए था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 2023-24 में पहली बार 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि वर्ष 2013-14 में खादी उत्पादों की बिक्री लगभग 31,000 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग ने उत्पादन, बिक्री और रोजगार सृजन में कीर्तिमान स्थापित किया है। श्री कुमार ने कहा कि खादी युवाओं के लिए फैशन का नया प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ब्रांड शक्ति से लोगों का खादी उत्पादों पर भरोसा बढ़ा है। श्री कुमार ने बताया कि 2013-14 में संचयी रोजगार 1,30,00,000 था, जो 2023-24 में 1,87,00,000 तक पहुंच गया है।
हमने ग्रामीण भारत में लोगों तक पहुंच बनाकर उनका दिल जीतने का काम किया है। ये हमारे आंकड़े बताने के लिए काफी है। खादी नया इतिहास रच रही है। नए भारत की नई खादी आने वाले साल में भी नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए अपने परिश्रम में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि जिस तरीके से हमने खादी ग्रामोद्योग आयोग में पिछले सालों में काम किया है, हम आगे उस काम को कंटिन्यू करेंगे।
न्यायाधीश शील नागू ने आज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की उपस्थिति में श्री नागू को शपथ दिलाई। चंडीगढ़ के राजभवन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल बडोली को हरियाणा प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस वर्ष के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री बडोली वर्तमान में सोनीपत जिले के राई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर था। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है और विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जरूरत नहीं है। श्री हुड्डा रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत, भारतीय जनता पार्टी के शीतल अंगुराल और कांग्रेस पार्टी की सुरिंदर कौर के बीच है। 1,72,020 मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्र में कुल 181 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने राजस्व जिलों के तर्ज पर महिला और बाल विकास जिला कार्यालयों को पुनः संगठित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को मंजूरी के लिए आज एक प्रस्ताव भेजा। दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि जिला कार्यालयों का पुनर्गठन सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को अनुकूलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं के सुचारू समन्वय और कार्यान्वयन में सुविधा होगी, जिससे विभाग और लाभार्थियों दोनों के लिए प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्व जिलों के साथ तालमेल बिठाकर सरकार संसाधनों का बेहतर आवंटन और कार्यक्रम का लक्ष्य सुनिश्चित कर पाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोगात्मक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए अगले 5 वर्षों के प्रारूप पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण का शिक्षा एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन भारत को एक ज्ञान महाशक्ति में बदलने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान और समावेशी पहुंच को सक्षम करने की कुंजी है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा और सभी भारतीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सक्रिय मानव अंग प्रतिरोपण के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। अपराध शाखा ने डॉक्टर और सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से किडनी रोगियों के फर्जी आधार कार्ड, अंगदाताओं और अस्पतालों के जाली दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा खाली स्टैम्प पेपर, हार्ड डिस्क, 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 1,800 अमरीकी मुद्रा भी जब्त की है। पकड़े गए सभी आरोपी बांग्लादेश के निवासी हैं। ये गिरोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काफी लंबे समय से सक्रिय था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को शिकायतकर्ता से 50,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि एक मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करने और मामले का निपटारा करने के लिए इंस्पेक्टर ने 5,00,000 रूपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में रिश्वत की राशि 50,000 रूपये में तय हुई। आरोपी इंस्पेक्टर दिल्ली के थाना ज्योति नगर में तैनात है और उसके खिलाफ सीबीआई की जांच जारी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने आज कहा कि रोजगार, शिक्षा और सहायक प्रौद्योगिकी दिव्यांग लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के 3 स्तंभ हैं। सुलभ और सहायक प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर 6 सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि नियोक्ताओं को दिव्यांग लोगों की श्रेष्ठ योग्यताओं का उपयोग करना चाहिए।
ये एक अच्छी बात है कि अभी इंडिया में बड़ी कंपनियां हो, मिड साइज हो, छोटी हो, सभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। हमारे जो दिव्यांग यूथ हैं पूरा आपको फुलफ्लेज काम करके दिखाएंगे, बहुत अच्छी आउटपुट देके दिखाएंगे। इंडस्ट्री में अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हमें पिछले 3-4 सालों में देखने को मिल रहा है कि सभी तरह की इंडस्ट्री चांस दे रही है।
दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आज तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 38.8 मिलीमीटर बारिश सफदरजंग इलाके में दर्ज की गई। वहीं लोधी रोड क्षेत्र में भी 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद आईटीओ, संगम विहार, बुराड़ी, देवली और राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में जलभराव भी देखा गया। बारिश से राजधानी का मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा दिल्ली में मौसम और वर्षा के पूर्वानुमान में सुधार के लिए 50 नए स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित की जाएगी। न्यायाधीश शील नागू ने आज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल बडोली को हरियाणा प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 2023-24 में पहली बार 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।